آپ ایس بی ایس اردو سن رہے ہیں۔
ہر شاعر کا کلام اس کی پہچان ہوتا ہے۔ اگر آپ ہمارے سننے والوں کو اپنے ہی کسی کلام سے کچھ سنائیں اور پوڈ کاسٹ کا آغاز وہاں سے کریں تو بڑی عنایت ہوگی۔
جی، یہ تو آپ نے بہت اچھی بات کہی، اور ہر شاعر کا کوئی نہ کوئی ایک مزاج اور ایک زمین ہوتی ہے۔ میری شاعری اصل میں جو ہے رومانی شاعری ہے، اور پیار محبت کی شاعری ہے، اور محبت میرا پیغام ہے، اور یہ میں کہوں گا جہاں تک پہنچے۔
بلانے کو ماضی کا جی چاہتا ہے، بلانے کو ماضی کا جی چاہتا ہے، میرا مسکرانے کا جی چاہتا ہے، تیرے پیار کا جب سے آنگن ملا ہے، میرا گھر بسانے کا جی چاہتا ہے، تیرے پیار کا جب سے آنگن ملا ہے، میرا گھر بسانے کا جی چاہتا ہے، جو نظریں چرا کر ہمیں دیکھتے ہیں، جو نظریں چرا کر ہمیں دیکھتے ہیں، انہیں کو چرانے کا جی چاہتا ہے، وہ جانے غزل میری جب سے ہوئے ہیں، وہ جانے غزل میری جب سے ہوئے ہیں، انہیں گنگنانے کا جی چاہتا ہے، تیری جھیل سے گہری آنکھیں جو دیکھوں، تیری جھیل سے گہری آنکھیں جو دیکھوں، میرا ڈوب جانے کا جی چاہتا ہے، یہ آنکھوں کے ساغر ہمیں آج دے دو، یہ آنکھوں کے ساغر ہمیں آج دے دو، کہ پینے پلانے کا جی چاہتا ہے۔
واہ واہ، کیا بات ہے،
بہت شکریہ، بہت۔
تو یہ کب اور کیسے شروع ہوئی شاعری، اور پھر اس طرح ترنم کے ساتھ گانے کا؟
ترنم تو میں سمجھتا ہوں کہ موسیقی چونکہ روح کی غذا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیعت ہوتی ہے۔ بہت اچھے اچھے شعرا، بہت اچھے اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے کلام لکھنے والے، لیکن وہ تحت اللفظ سے پڑھتے ہیں، ان کو تحت اللفظ میں مزہ آتا ہے۔ میری کمزوری یہ ہے کہ میں ترنم کے بغیر مصرع موضوع نہیں کر سکتا۔ میں کوئی ایک مصرع موضوع کرتا ہوں، اسے گنگناتا ہوں، وہ میری لہن میں آ جاتا ہے، تو پھر میں اس سے جو ہے پوری غزل بناتا ہوں۔ اور اس وجہ سے جو ہے وہ میری کمزوری کہہ لیجئے یا میری خوبی کہہ لیجئے، کہ میں ترنم کے بغیر جو ہے نا شعر موضوع نہیں کر سکتا۔
تو کس عمر سے آپ کو اس چیز کا احساس ہوا کہ آپ یہ کر سکتے ہیں، اور کب سے شروع کیا؟
ایکچولی ہمارے فیملی میں امی ہماری شاعرہ تھیں، اور ہمارے بھائی بہن وغیرہ وہ لوگ بھی جو ہے کچھ افسانہ نگار رہے ہیں، کچھ افسانہ نگار ہیں، بہن ہیں افسانہ نگار ہیں، اور بھائی ہیں، وہ لوگ بھی شاعر ہیں اور جو ہے لکھتے لکھاتے ہیں۔ اصل میں تو جب ہم اسکول اور کالج میں تھے، وہاں جو ہے جو نشست وغیرہ ہوا کرتی تھی، بیت بازی کے مقابلے ہوتے تھے، تو اس میں ہم بچپن سے حصہ لیتے تھے، اور کالج میں پہنچ کر یہ ذرا اور امپروو ہو گیا تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے بزم طلبہ کا پروگرام ہوتا تھا کراچی میں ریڈیو پاکستان سے، تو وہاں سے ایکچولی جو ہے وہ ایک نہج مجھ کو ملی، اور وہاں سے ہم نے جو ہے نا تھوڑی ہلکی پھلکی شاعری شروع کری، اور آہستہ آہستہ اس میں پختگی آتی گئی، اور اب اللہ تعالیٰ نے اس قابل کیا کہ ہم خود سے اپنی اچھی اشعار کہہ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، لوگوں کو سننے میں مزہ آتا ہے۔
کیا بات ہے، آپ نے ماشاء اللہ سے دو کتابیں بھی لکھی ہیں، اس کے بارے میں ہمارے سننے والوں کو کچھ بتائیے۔
میں نے جیسے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ جو ہے وہ ہماری پیار و محبت کی شاعری ہے، تو پہلی کتاب ہے اس کا نام ہی پیار کا آنگن ہے، اور یہ جو میں نے آپ کو ابھی پہلی غزل سنائی تھی یہ اسی کا حصہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے دوسری کتاب لکھی، تو وہ بھی دریچہ الفت کے نام سے ہے، اور اب ایک تیسری کتاب جو ہے وہ ابھی تکمیل کے مراحل میں ہے، اس کا نام ہے شیریں سخن۔ کیونکہ یہ نام تو بہت سارے ذہن میں تھے، لیکن ترنم اور تمام چیزوں کے حوالے سے ہماری بیگم صاحبہ جو ہے انہوں نے ہم کو تجویز کیا کہ آپ یہ نام سلیکٹ کریں۔
شعر محبت میں ہاں بے شک اتنا میرا نام نہیں، शेर मोहब्बत में हाँ बेशक इतना मेरा नाम नहीं, जितना समझते हैं सब हमको इतने हम बदनाम नहीं। सागर मीना छोड़ दिए हैं, जाम सुबू अब साथ नहीं। सागर मीना छोड़ दिए हैं, जाम सुबू अब साथ नहीं। जब से मिली हैं आँखें सागर, मांगा हमने जाम नहीं।
आप ये बताएं कि बहुत से आजकल सोशल मीडिया का दौर है और काफ़ी ऐसे ग्रुप और सफ़ात फेसबुक पे बनाए जाते हैं जिसमें नौजवान नस्ल शायरी लिखती है, लेकिन हम ये भी समझते हैं कि जो मईशत का हाल है उसमें वो अपना काम छपवाने से कासिर है, तो किताबों के छपवाने में बहुत बड़ा ख़र्चा आ जाता है। तो आप इस नई नस्ल के शायरों को कुछ तजवीज़ या कोई पैगाम देना चाहेंगे जो लोगों तक तो पहुँचना चाहते हैं लेकिन किताब का मजमूआ छपने का कुछ आसार नज़र नहीं आते?
बहुत आपने चुपता हुआ सवाल किया हम जैसे शोरा और राइटर्स के लिए कि वाकई किताब को जो है वो सफ़ात में और किताबी शक्ल में जो है ना लाना बहुत मुश्किल काम है, इस वजह से कि इसमें काफ़ी खर्च आता है। दूसरे ये कि जब से सोशल मीडिया का ये दौर आया है इसमें आम तौर से लोगों का रुझान जो है वो किताबों की तरफ जो है वो नहीं है, और मेरी भी अपनी कमज़ोरी है कि मैं ज़खीम किताबें और बहुत बड़ा जो है मजमून है उससे उकता जाता हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि जब मेरी एक फितरत में शामिल है, मैं समझता हूँ कि शायद और लोगों के जहन में भी ऐसी चीज़ें हों कि इतनी तवील चीज़ को जो है क्यों किया जाए। जो शेर है, अशार हैं, जो शायरी है, उसकी खूबी यही है कि बहुत बड़े मफहूम को एक दो मिसरों के शेर में जो है ना समो देता है। तो सोशल मीडिया के होने की वजह से ये आसानी हो गई है कि हर शख्स को हर बात कहने की एक तो आज़ादी हो गई है और उसके पास एक जो है ना मीडिया मिल गया उसको कि वो अपनी बात, अपनी शायरी, अपना हुनर, अपना फ़न, हर चीज़ उसके ऊपर जो है ना पेश कर सकता है, और उसको देखने वाले, सुनने वाले, पढ़ने वाले, महसूस होने वाले, उनकी तादाद उन लोगों से हज़ार गुना ज़्यादा है जो सिर्फ किताबों के महरूने मन्नत होते हैं। बहुत से शोरा और शायरात ऐसी हैं जिनको अभी तक के कोई नहीं जानता था, लेकिन जब से ये फेसबुक का और सोशल मीडिया का दौर आया है इसमें उनको जो है उनका एक्सपोजर हुआ है और लोग उनको भी जानने लगे, उनको ही बुलाने लगे हैं मुशायरों में और तकरीबा में।
जैसे कि औलाद में तफरीक करना बड़ा मुश्किल होता है कि आपके दिल के करीब कौन सी नज्म सबसे ज्यादा है और क्यों है?
बात दरअसल ये है कि जो सबसे करीब है वो तो ये मेरी शायरी, जैसे मैं कहा था प्यार मोहब्बत की शायरी है, ये तो अपनी जगह है, और इसमें जो है वो आदमी अपने किसी न किसी दौर में प्यार मोहब्बत से उसका साबका ज़रूर पड़ता है। तो ये जो कह सकते हैं कि आप जो है वो हमारी जो बेगम साहिबा हैं उनका जहन, उनकी शक्ल, उनकी सूरत देखकर अशार मौजू होते रहते हैं, ख़ुद ब खुद उसमें आते रहते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी अजीम हस्ती है वो आप समझ सकती हैं, वो माँ की है, और मैं ये भी कहता हूँ कि अगर आज अम्मी हयात होती तो मुस्लिम जो है वो इस स्टेज पे ना होता, इससे बहुत ऊंचा होता।
आपने माँ की बात की है तो माओं के आलमी दिन के हवाले से आपकी किताब में एक बहुत जज्बाती नज़्म है, अगर हमारे सुनने वालों की नज़र करें तो बहुत इनायत होगी।
ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं, असल में माँ के ऊपर सारा कब्ज़ा जो है ना उनकी बेटियों का है, और बेटियाँ ये समझती हैं कि माँ सिर्फ उन्हीं की होती है और हम बेटे जो है उसके इतने हकदार नहीं हैं, इतना उनको नहीं समझते। गो के किसी हद तक ये बात सही भी है कि बेटी जो है वो चूँकि चली जाती है उसकी मोहब्बत जो है वो माँ के जहन में रहती है। तो मैंने नज़्म तो लिखी है माँ के ऊपर ही, लेकिन ये कि इसमें जो है अपनी बहनों की तरफ से जो है ये लिखी है ताकि वो कहती भी थी कि मुस्लिम भाई आप जो है ना अम्मी के ऊपर कुछ नज़्म लिखी है, तो मैंने उनकी तरफ से लिखी है, मैं पेश करता हूं। इरशाद, चंदा जैसी होती है माँ, चंदा जैसी होती है माँ, तारा जैसी होती है माँ, बचपन मेरा अब भी पूछे कैसी होती है माँ,
कह दो खुशबू होती है माँ। रातों को ना सोती थी मैं, अक्सर उठ के रोती थी मैं, सीने से अपने मुझको लगा के लोरी देती थी माँ। कह दो नींदें खोती है माँ। रातों को जब पढ़ती थी मैं, फिर सुबह ना तो उठती थी मैं, सारा सबक फिर सुनकर मुझसे बसता देती थी माँ। उस्तानी भी होती है माँ। MBA जब पास हुई थी, MBA जब पास हुई थी, बातें जब कुछ खास हुई थी, रिश्ता लेकर जब वो आए हाँ ही बोली थी माँ। उजलत में तो होती है माँ। रहमत घर में उसके दम से, रहमत घर में उसके दम से, जन्नत कदमों में है जिसके, कितना सूना होता है घर जब ना होती है माँ। कह दो नेमत होती है माँ, कह दो नेमत होती है माँ, कह दो संदल होती है माँ, कह दो सुंदर होती है माँ, कह दो माँ तो होती है माँ।
वाह वाह, कितना सूना होता है घर जब ना होती है माँ। बड़ी आपने खूबसूरत बात की। अल्लाह सबकी माँओं को सलामत रखे।
बेशक मेरी यही दुआ है।
बिल्कुल, माँ के बाद तो कुछ और कहने की गुंजाइश नहीं रहती। तो हम अपने इस इंटरव्यू का अख्तिताम इसी बात पर करते हैं। मुस्लिम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियोज़ में आए और हमें अपनी इस खूबसूरत सी छोटी सी महफिल जो है उससे आपने नवाजा।
मैं भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ SBS का कि उन्होंने मुझे जो है यहाँ मौका दिया और मेरा कलाम और मेरा पैगाम सब लोगों को सुनाने का मौका अदा किया। शुक्रिया बहुत।
मजीद दिलचस्प मालूमात के लिए SBS.com.au/urdu पर जाइए।